प्रकरण चार, काव्यखंड, संवत 1975, नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मंजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मंजी है। जैसा पहले कह चुके हैं, हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए तीन रास्ते खोले गए, उर्दू या फारसी की बहनों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। वह हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं, अतः शेष दो मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जाता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जगड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अतः वर्ण वृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर ही रहेगी। हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाकधारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उनका मंजना कहा जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी हैं। सवैया यद्यपि वर्ण वृत्त है, पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन ही नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छा अनुसार नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कवित्तों और सवैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मंजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मन जाने की पूरी आशा होती है। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मंजना तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठे। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मंजते देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट समागम द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी पद्यों के वाक्य खंडों के शब्दानुवाद जोड़ जोड़ कर हिंदी कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते, पर हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, यह बहुत अच्छी बात है। तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएं ठीक हैं, पृष्ठ संख्या 348। पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद मीटर के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसे कई रंगत के कवियों में देखने आते हैं। यह अमेरिका के एक कवि वॉल्ट व्हिटमैन की नकल है जो पहले बंगला में थोड़ी बहुत हुई। बिना किसी प्रकार की छंदो व्यवस्था की अपनी पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास उसने सन 1855 ईस्वी में प्रकाशित की। उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली, जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है, एचोस ऑफ इम्प्रेशंस, थॉट ऑफ फीलिंग्स थ्रोन टुगेदर विदाउट डाइम, विच मैटर्स लिटिल विदाउट मीटर, विच मैटर्स मोर एंड ऑफन विदाउट रीजन, विच मैटर्स मच। लिटरेचर इन द सेंचुरी 19th सेंचुरी सीरीज बाय ABD मिले। सारांश यह कि उसकी ऐसी कविताओं में छंदो व्यवस्था का ही नहीं बुद्धि तत्व का भी प्रायः अभाव है। उसकी वे ही कविताएं अच्छी मानी और पढ़ी गई जिनमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीति काव्यों के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत में बंधी हुई राग रागिनियाँ हैं, पर यूरोप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ, वहाँ की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया। निराला जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं, छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली भी में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुईं, जिससे अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता होगी वह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य और आभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलटफेर की प्रबल कामना का वेग। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान ह्रास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। अभिप्राय यह कि यह प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। भाषा ब्रज भाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बंधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी। द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी। यहाँ पृष्ठ संख्या 349 तक की नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय दिखाई पड़ा। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती ऐसी पुस्तक निकली। इस भावना का प्रसार तो हुआ, पर इसकी अभिव्यंजना में प्रातिप प्रगल्भता ना दिखाई पड़ी। शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरी पिचारणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ ही कुछ अधिक ब्यौरे के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ साफ कहा गया कि अब नायिका भेद और श्रृंगार में ही बंधे रहने का जमाना नहीं है। संसार में न जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान समझते रहे और छंद पदावली अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। रीतिकाल के श्रृंगारी कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा, इस तरह की कविता सैकड़ों वर्ष से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक, इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता सवैये दोहे सोरठे लिखने से बाज नहीं आते। द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत से नए नए विषय लिए गए और बहुत से कवि कवित्त सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हों, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रही। उसके रूप व्यापार कैसे सुखद सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न हुआ। उनके बीच मनुष्य जीवन को रखकर उसके प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। रहस्यमय सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचता है, वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर न हुआ। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में ही लगा। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण हुआ। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी, वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता आया। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजी के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दयामय भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं उद्योग धंधों को न बढ़ाने, आलस्य में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग न दिखाई पड़ा। बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम पृष्ठ संख्या 350 के साथ थोड़े से शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी, जिसका कोई स्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव देखने में नहीं आता था। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे। तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदायों को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे यह शोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं में प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। अतः एक ओर तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। अब संसार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक तो अवश्य ही पहुंच जाती हैं। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है, तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं, जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप में जब देश के बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई। यहाँ अभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी है, पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ। जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। यह तो हुई काल के प्रभाव की बात। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति पृष्ठ संख्या 351 किन किन रूपों में हुई। भक्ति काल और रीति काल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफाई आई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत रूखा इतिवृत्तात्मक और अधिकतर बाह्यार्थ निरूपक हो गया। अतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया, वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थ भूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखाई पड़ती थी। कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुल कर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी और बंगला या अंग्रेजी कविता का परिचय करने वालों को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पद लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, वेदना की विवृति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गई। सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा काव्य की सी ललित पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बंगला की कविताओं से प्रभावित थे, वे कुछ लाक्षणिक वैचित्र व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर अनुक्तियां देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संवत 1967 सन 1910 से ही निकलने लगे थे। ग्रे वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी, उसे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्री नारायण भट्ट। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकर कविताएं और प्रगीत मुक्तक बंगला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विश्रृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी कोमल और व्यंजक भाषा में इनकी नए ढंग की रचनाएं संवत 1970-71 से ही निकलने लगी थीं, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। एक, मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी की नक्षत्र निपात सन 1914, अनुरोध सन 1915, पुष्पांजलि 1917, स्वयं आगत 1918 इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य हैं। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां आगे देखिए। क, मेरे आंगन का एक फूल, सौभाग्य भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वासन से हिला हुआ, संसार विटप से खिला हुआ, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। ख, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। इसी प्रकार गुप्त जी की और भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं हैं, जैसे ग, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी। मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। पृष्ठ संख्या 352 घ। प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस कहा। सो जाने के लिए जगत का यह प्रकाश है जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा। निरुद्देश नख रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति अहा। 2 मुकुट धर पांडे। गुप्त जी, तो जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या वाद में न बंद कर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं, पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। कुछ नमूने देखिए। क, हुआ प्रकाश तमोमय मग में, मिला मुझे तू तक्षण जग में। दंपति के मधुमय विलास में, शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में, वन्य कुसुम के शुचि सुवास में, था तव क्रीड़ा स्थान। 1917। ख, मेरे जीवन की लघुतरणी आंखों के पानी में तर जा। मेरे उर का छिपा खजाना, अहंकार का भाव पुराना, बना आज तू मुझे दीवाना, तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा। 1917। ग, जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निजगान। शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक बैठ तुम्हारा करूं वहां नीरव अभिषेक। 1910। 3, पंडित बद्रीनाथ भट्ट। भट्ट जी भी सन 1913 के पहले से ही भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे थे। 2 पंक्तियां देखिए। दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्ज्वल प्रभा प्रताका, अंधकार हिय हूल। 4, श्री पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। बख्शी जी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915-16 के आसपास मिलेंगे। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर, उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर, भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी। पृष्ठ संख्या 353, जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी, जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई नई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी कि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी, परंतु ईसाई संतों के छायाभास पेंटा समाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिंबॉलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थीं। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था, इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विश्रृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई। हृतंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पांव आना, आंख में चौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साखी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर फेर के साथ वही बंदी पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन, कुछ विश्रृंखलता के साथ प्राय सब कविताओं में मिलने लगा। अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ यह भी था, वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस्त्र दल कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गई है उसका तात्पर्य क्या है। या कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक हैं, प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। उनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्य, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्य साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि। पृष्ठ संख्या 354 बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है। संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो। कबीर दास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैं। उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का यह नूतन भाव भंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है, यह और बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावाद ही कही जाने लगी। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रखकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म के अर्थ में होने लगा। छायावाद के इस धारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के साहित्य क्षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला संबंधी अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कला का उद्देश्य कला ही है, इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं, उसकी दुनिया ही और है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है, कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी या पैगंबर है। इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि काव्य में वस्तु या वर्ण विषय कुछ नहीं, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेल बूटे या नक्काशी का। कवि कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि सौंदर्य भावना के मध में झूमने वाला एक लोकातीत जीव। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना से बताने वाला मत भी इधर उधर उद्धृत हुआ। सारांश यह कि इस प्रकार के अनेक वाद प्रवाद पत्र पत्रिकाओं में निकलते रहे। छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा के रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, पर उन कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित देख अंग्रेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में जड़ने लगे। कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाल, तारिकाओं की तान, स्वप्निल कांति, ऐसे प्रयोग अजायब घर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वैलक्षण का। केवल भाषा के प्रयोग वैचित्र तक ही बात न रही, ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है उन सब का प्रभाव भी छायावाद कही जाने वाली कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही वृत्त हुई। प्रकृति के नाना रूपों और व्यापार इसी प्रस्तुत योजना के काम में लाए गए, सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रवृत्त न दिखाई पड़ा। पंत जी अलबत्ता प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुक कर हृदय रमाते पाए गए। दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थभूतियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना के चित्र विधायिनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना औत्सुक्य उन्माद आदि की व्यंजना करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक प्रस्वेद गंधयुक्त चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे हैं। लक्षणा शक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ है, पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ी चल रही है। रीतिकाल के श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर कभी खुले मैदान अपने कुछ अदा बदलकर फिर प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेक कर चल रही है। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं को पर लगाकर कोहफाक की परियों या बिहेश्त के फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल उषा विकच कलिका पराग सौरभ स्मित आनंद अधर पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते। कला कला की पुकार के कारण यूरोप में गीत मुक्तकों का ही अधिकतर चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रस वर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहां यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है, कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बरात की फुलवारी की तरह ही शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है, इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरुभाव की आशंका नहीं है। पर छायावाद और कलावाद के सहसा आ धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बंदी हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अर्थ भूमियों पर न जाने पाया यह अब अवश्य कहा जाएगा। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। भाषा के परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे सूखे रूप से उबकर कुछ कवि उसमें सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे यह कहा जा चुका है। अर्थात आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्य भाषा में लाक्षणिकता का कैसा अनूठा आभास घनानंद की रचनाओं में मिलता है यह हम दिखा चुके हैं। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है, उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद नाम की काव्य शैली के रूप में गृहित होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। हर्ष की बात है कि अब कई कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के और मार्मिक पक्षों की ओर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ पृष्ठ संख्या 356 काव्य शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन व नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है। अब अपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति की वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अर्थगर्भित रूप देने की रुचि क्रमशः अधिक होती दिखाई पड़ती है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना से झीले शब्द पथ निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय का ही मधुगान ही करते रहे, पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली को विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत के वर्तमान दुख द्वेष पूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इस चले जगत के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को भी जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन में सौंदर्य चयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली है, सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया है और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। बहुत अच्छा होता यदि पंत जी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते जिस प्रकार उन्होंने गुंजन और युगांत में किया है। युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों के प्रतिध्वनि के रूप में परिणत होती दिखाई देती है। निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं उस नाद वेग आकार सार का गान किया, जूही की कली और शेफालिका में उन्मद प्रणय चेष्टाओं के पुष्प चित्र खड़े किए, उसी प्रकार जागरण वाणी बजाई, इस जगत के बीच विधवा की विधुर और करुण मूर्ति खड़े की और इधर आकर इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर केशम सीकर दिखाए। सारांश यह कि अब शैली के विलक्षण द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। इधर हमारे साहित्य क्षेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है। कला में व्यक्तित्व की चर्चा खूब फैलने से कुछ कवि लोग के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना कुछ मार्मिकता और कुछ फक्कड़पन के साथ करने लगे हैं। भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहाँ जाकर प्राय सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर अनेकता में एकता को लेकर चलता रहा है, असामंजस्य को लेकर नहीं। उपर्युक्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलने वाली कविताओं के साथ साथ दूसरी धाराओं की कविताएं भी विकसित होती हुई चल रही हैं। द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविध वस्तु भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्य धारा सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसी राम शर्मा दिनेश इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग आख्यान और विषय लेकर निथरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चली चल रही है। उसकी अभिव्यंजना प्रणाली में अब अच्छी सरसता और सजीवता तथा अपेक्षित वक्रता का भी विकास होता चल रहा है। यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम गान की परिपाटी का फैशन चल पड़ने के कारण अर्थभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बंदी लीक पर बहुत दिनों तक चला, फिर भी स्वाभाविक स्वच्छंदता के उस नूतन पथ का ग्रहण करके कई कवि चले जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है। तृतीय उत्थान के आरंभ में मुकुटधर पांडे की रचनाएं छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थी यह भी हम दिखा आए हैं। मुकुटधर जी की रचनाएं नरेतर प्राणियों की गतिविधि का भी राग रहस्य पूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर झुकती मिलेंगी। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का राग पूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पथ चिन्ह हैं। सर्वश्री सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर गुरुभक्त सिंह, उदय शंकर भट्ट इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता का मर्म पथ ग्रहण करके चल रहे हैं। वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए पुराने छंदों का तिरस्कार करते हैं, न उन्हीं में एक बारगी बंद कर चलते हैं। वे प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार और नए ढंग के छंदों तथा चरण व्यवस्थाओं का विधान भी करते हैं। व्यंजक चित्र विन्यास, लाक्षणिक वक्रता और मूर्तिमत्ता, सरस पदावली आदि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समझते। एक छोटे से घेरे में इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत और जीवन की अनंत बीतियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिए आकुल दिखाई देती है। तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों के संक्षिप्त विवरण से ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलने वाली खड़ी बोली की तीन मुख्य धाराएं स्पष्ट हुई होंगी। द्विवेदी काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, छायावाद की कही जाने वाली धारा तथा स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर चलती हुई धारा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। ये धाराएं वर्तमान काल में चल रही हैं और अभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, इसलिए इनके भीतर की कुछ कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही हम संतोष करेंगे। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु विधान और अभिव्यंजन कला के रूप और परिमाण में है, पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई दूसरी विशेषता दूसरी में दिखाई ही न पड़े। जबकि धाराएं साथ साथ चल रही हैं तब उनका थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने की कभी कभी इच्छा कर सकता है। धाराओं का विभाग सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर भी दो चार कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सब धाराओं की विशेषताएं समान रूप से पाई जाएंगी, जिनकी रचनाओं का स्वरूप मिला जुला होगा। कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी भी तो व्यक्तिगत होगी। ब्रजभाषा काव्य परंपरा। जैसा कि द्वितीय उत्थान के अंत में कहा जा चुका है, ब्रजभाषा की काव्य परंपरा भी चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब ब्रजभाषा की रचनाएं प्रकाशित बहुत कम होती हैं, पर अभी देश में न जाने कितने कवि नगरों और ग्रामों में बराबर ब्रजवाणी की रसधारा बहाते चल रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान पर कवि सम्मेलन होता है तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। रत्नाकर जी की उद्धव शतक ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं इस उत्थान में ही निकली थी। सर्गबद्ध प्रबंध काव्यों में हमारा बुद्ध चरित संवत 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध का लोकपालन चरित उसी काव्य परंपरागत भाषा में वर्णित है जिसमें रामकृष्ण की लीला का अब भी घर घर गान होता है। श्री वियोगी हरि जी की वीर सत्सई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए। देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारे लाल भार्गव जी के दोहे बिहारी के रास्ते पर चल ही रहे हैं। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को रामचंद्रोदय काव्य के लिए देव पुरस्कार थोड़े ही दिन हुए मिला है। मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बारहट का प्रताप चरित्र वीर रस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है जो संवत 1992 में प्रकाशित हुआ है। पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही की सरस कविताओं की धूम कवि सम्मेलनों में बराबर रहा करती है। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास जी का ब्रज रज इसी तृतीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ है। इधर श्री उमा शंकर वाजपेयी उमेश जी की ब्रज भारती में ब्रज भाषा बिल्कुल नई सहज धस के साथ दिखाई पड़ती है। हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रज भाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रजभाषा के अधिक मेल में लाना होगा। अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध चरित काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी। 2. द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा। इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रजभाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। श्रृंगार रस के कवित्व सवैये बहुत लिखे जा चुके, अब और विषयों को लेकर तथा और छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी तरह ढलने में जो काल लगा उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिवृत्तात्मक रही, पर स्थिति उत्थान में आकर यह काव्य धारा कल्पनान्वित भाषाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी है। भाषा का मंजना वहीं संभव होता है जहां उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। एक संबंध सूत्र में बद्ध कई अर्थ समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिए ही ऐसी भाषा अपेक्षित होती है, जहां एक दूसरे में असंबद्ध छोटी छोटी भावनाओं को लेकर वाग वैशिष्ट्य की झलक या चलचित्र की ही छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी, वहां भाषा की समन्वय शक्ति का परिचय न मिलेगा। व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्य धारा में बना हुआ है। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है, हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार। इन छंदों की लयों के भीतर नाथ सौंदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने के डर से ही इन छंदों को छोड़ना सा हृदयता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं में जो पद्य या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्रायः अलापने की जरूरत होती है, पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलाप के साथ गाना दोनों अलग अलग हैं। इस धारा में कल्पना और भावात्मिका वृत्ति अधर में नाचती तो नहीं मिलती है, पर बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिक कर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है। इससे कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य ही के संचरण के लिए रास्ता खोलता है। ज्ञान प्रसार के ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थभूमियों की ओर वह बहेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धारा एक समीचीन पद्धति पर चली है। इस पद्धति के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है यह देखकर प्रसन्नता होती है। अब इस पद्धति पर चलने वाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है। एक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं, इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मस्ती चली आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ संवत 1971 से होता है। अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी। प्रारंभिक रचनाएं साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें बराबर मार्मिक उद्भावना तथा अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है। इनकी छोटी छोटी रचनाओं में, जिनमें से कुछ गेय भी हैं, जीवन की अनेक दशाओं की झलक है। मानवी में इन्होंने नारी को दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिनी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। ज्योतिषमती के पूर्वार्ध में तो असीम और अव्यक्त तुम है, और उत्तरार्ध में ससीम और व्यक्त मैं संसार के बीच। इसमें प्रायः उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी छायावाद के भीतर होती है, पर ढंग बिल्कुल अलग, अर्थात रहस्य दर्शियों का सा न होकर भोले भाले भक्तों का सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है कि पृष्ठ संख्या 359, पृथ्वी पर सदा ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे। व्यंजना को गुण बनाने के लिए कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अस्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता। आजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्र तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर वे खुलकर सामने आते हैं। जैसे सज धजकर मृदु व्यथा सुंदरी, तजकर सब घर बार, दुख यामिनी में जीवन की करती है अभिसार। उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध कवि बड़ी सफाई से इतने ही में व्यक्त कर देता है। तू अनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है जग में मेरा तेरा। उदय अस्त अब तेरा साथी मैं ही हूँ इस जग में, मैं तुझमें ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सवेरा। मानवी में अभागिनी को संबोधित करके कवि कहता है, चुकती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहीं होता, तेरे सुहाग का सुख बाले, आजीवन रहता है सोता, है फूल फूल जाते मधु में, सुरभित मलयानिल बहती है, सब लता बल्लियां खिलती हैं, बस तू मुरझाई रहती है। सब आशाएं अभिलाषाएं उर्कारागृह में बंद हुई, तेरे मन की दुख ज्वालाएं मेरे मन में छंद हुई। 2. अनूप शर्मा। बहुत दिनों तक ये ब्रजभाषा में ही अपनी ओजस्विनी वाग्धारा बहाते रहे, खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुड़े। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा, फिर बुद्ध भगवान का चरित्र लेकर सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्ण वृत्तों में इन्होंने लिखा। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह सुमनांजलि में है, इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिए कवित्व ही चुना है। भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप से रखकर काव्य भूमि के भीतर ले आए हैं। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। अनूप जी इसी ओर बढ़े हैं। जीवन मरण में कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविध भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार विराट भ्रमण में देवी के आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है। एक झलक देखिए, पीछे दृष्टिगोचर था गोल चक्र पूषण का, घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता, मानो जलयान के बितल पृष्ठ भाग मध्य आता चला फेन पीत पिंड सा उबलता, उछल रहे थे धूम केतु धूरियों से तीव्र, ज्ञान केतु ताड़ित भचक्र था उछलता, मारुत का मन का प्रवेग पड़ा पीछे जब, आगे चला बाजीयुत आतप उगलता। 3. श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी। खड़ी बोली के कवित्व और सवैयों में ये वही सरसता, वही भाव भंगी लाए हैं जो ब्रजभाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती है। इस बात में इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है, तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता। रचनाओं का रंग रूप अनूठा और आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है। शैली वही पुराने उस्तादों के कवित्व सवैयों की है, जिनमें वाग्धारा अंतिम चरण पर जाकर चमक उठती है। हितैषी जी ने अनेक काव्योपयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी छोटी रचनाएं की हैं, जो कल्लोलिनी और नवोदिता में संग्रहित हैं। अनुक्तियां इनकी बहुत मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने देखिए। किरण। दुखनी बनी दीन कुटी में, कभी महलों में कभी महारानी बनी, बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी हिमकूट की देवी हिमानी बनी, चमकी बन विद्युत रौद्र कभी घन आनंद अश्रु कहानी बनी, सविता शशि स्नेह सुहाग सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी, भव सिंधु के बुद्ध प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वासा कहें कहो तो, अथवा छलनी बनी अंबर के उर्की अभिलाषा कहें कहो तो, घुलते हुए चंद के प्राण की पीड़ा भरी परिभाषा कहें कहो तो, नभ से गिरती नखतावली के नैनों की निराशा कहें कहो तो। परिचय। हूँ हितैषी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का बिसारा हुआ, घर से किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुत्कारा हुआ, नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हूँ उतारा हुआ, अजी हाल हमारा ही पूछते क्या, हूँ मुसीबत का एक मारा हुआ। चार। श्री श्याम नारायण पांडे। इन्होंने पहले त्रेता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था, जिसमें लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया था। यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्णवृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। माधव और रिमझिम नाम की इनकी दो और छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के महाकाव्य में दिखाई पड़ा। उत्साह की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का ऐसा सजीव और प्रभावपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में आता है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहरा कर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन मोर छटा, वारिद के उर में चमक दमक, तड़तर थी बिजली तड़क रही, रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा थी फड़क रही, धरती की प्यास बुझाने को वह घहर रही थी घन सेना, लोहू पीने के लिए खड़ी यह हहर रही थी जन सेना, नभ पर चमचम चपला चमकी, चमचम चमकी तलवार इधर, भैरव अमंद घननाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर, कलकल बहती थी रण गंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, बैरी दल की ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी, क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण बढ़ी चढ़ी चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। 5। पुरोहित प्रताप नारायण। इन्होंने नल नरेश नामक महाकाव्य 19 सर्गों में रोला हरे गीतिका आदि हिंदी छंदों में लिखा है। इसकी शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित होती हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ है उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता। अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई है। इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध काव्य कृत्रिम और प्रभाव शून्य हो गए। इस 20वीं सदी के लोगों का मन विरह ताप के लेपादि उपचार चंद्रोपालभ इत्यादि में नहीं रम सकता था। श्री मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उबाता है। मन के मोती और नव निकुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं जिनकी शैली अधिकतर इतिवृत्तात्मक है। काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में ब्रजभाषा की भी कुछ कविताएं हैं। 6. तुलसीराम शर्मा दिनेश। इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर लिखा है। यह 8 अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई है, जिससे श्री कृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजते हैं। दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके अर्थ उसासों को ही वंशी का स्वर जानो। इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी, आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, उसकी घर की गायों का रे दूत बना मदिरा सारा। पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती हैं, यह बात रुक्मिणी कहती मिलती है। यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़ चलती और आकर्षक नहीं। 3. छायावाद। सम्मत 1970 तक इस प्रकार खड़ी बोली के पद्यों में ढलकर मंझने की अवस्था पार हुई और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप रंग देने में प्रवृत्त हुए यह कहा जा चुका है। उनके कुछ रहस्य भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्य क्षेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रविंद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। रहस्य भावना और अभिव्यंजन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से सहानुभूति तक कल्पित होने लगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की जाती है उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना भी बहुत कुछ होने लगी। काव्य की प्रकृत पद्धति तो यह है कि वस्तु योजना चाहे लोकोत्तर हो पर भावानुभूति की का स्वरूप सच्चा अर्थात स्वाभाविक वासना जन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो हृदय से उसका संबंध क्या रहेगा। भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती तो सच्चाई कहाँ रहेगी। यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल अभिलाष व्यंजित करे अपने मर मिटने के अधिकार पर गर्व की व्यंजना करे तो कथन के वैचित्र से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा पर ऐसा अभिलाषा या की कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता न होगी। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुंचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती है जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद कहलाने लगे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र में वहाँ के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। सन 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद कहलाया। वे अपने रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिए भी प्रतीक शैली की ओर वहाँ प्रवृत्ति रही। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी नियुक्त पद्धति पर की हैं पर उनकी शब्द कला वासनात्मक प्रणयोद्गार वेदना विवृति सौंदर्य संगठन मधुचर्या अतृप्ति व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही। जीवन के अवसाद विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमय गानों में मिलती रही। इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्रभाषा शैली का वे विलक्षण के साथ प्रदर्शन करते रहे। जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है वे लक्षण लाने के लिए अंग्रेजी की लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते रहे जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित्र की ओर कम थी। वे बंग भाषा के कवियों के ढंग पर श्रुति रंजक या नादानुकृत पदावली गुम्फित करने में अधिक तत्पर दिखाई दिए। चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अनुक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रुखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अनुक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार के रूप में भी हुआ। इनमें से उपादान और लक्षण लक्षणाओं को छोड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साध्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली हैं। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएं बहुत पहले भी होती थीं तथा रीति काल के और उसके पीछे भी होती रही हैं। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः तीन प्रकार का माना गया है। सादृश्य रूप या आकार का साम्य, साधर्म्य गुण या क्रिया का साम्य और केवल शब्द साम्य, दो भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना। इनमें से अंतिम तो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वालों के ही काम का है। रहे सादृश्य और साधर्म्य, विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों की ओर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना जगाते हैं। काव्य में बंधे चले आते हुए उपमान अधिकतर इसी के हैं। केवल रूप, रंग, आकार या व्यापार को ऊपर से देखकर या नाप जोक कर भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना वे नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि कर्म के बहुत कुछ श्रम साध्य या अभ्यास गम्य होने के कारण जब कृत्रिमता आने लगी तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप जोक के अनुसार भी रखे जाने लगे। कटी की सूक्ष्मता दिखाने के लिए सिंघनी और भीड़ सामने लाई जाने लगी। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधन में अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर हम अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुप, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुर्य के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या कांतिमान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या शोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग के लिए झंकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। हिंदी का काव्य परंपरा में अनुक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थीं। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया, जैसे एक धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। धूल की ढेरी असुंदर वस्तुएं, मधुमय गान गान के विषय अर्थात सुंदर वस्तुएं। दो मर्म पीड़ा के हास, हास विकास समृद्धि, विरोधी वैचित्र के लिए व्यंग व्यंजक संबंध को लेकर लक्षणा। मर्म पीड़ा के हास, हे मेरे पीड़ित मन आधार आधेय संबंध लेकर। तीन चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस, चांदनी मृदुलता शीतलता, बच्चों की सांस भोलापन। चार मृत्यु का यही दीर्घ निश्वास, मृत्यु आसन्न मृत्यु व्यक्ति अथवा मृतक के लिए शोक करने वाले व्यक्ति। पांच कौन तुम अतुल अरूप अनाम, शिशु के लिए अल्पार्थक के स्थान पर निषेधार्थक। पल्लव में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके लिए कहीं कहीं अंग्रेजी के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यों के त्यों ले लिए गए, पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दूरारूढ़ भावना की। उनके उपलक्षण सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे, जैसे लहर। पृष्ठ संख्या 364। एक झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। झंझा झकोर शोभ आकुलता, गर्जन वेदना की तड़प, बिजली चमक या टीस, नीरद माला अंधकार। शून्य शब्द विशेषण के अतिरिक्त आकाशवाचक भी है, जिससे उक्ति में बहुत सुंदर समन्वय आ जाता है। दो पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। पतझड़ उदासी, किसले दल कुसुम वसंत सरसता प्रफुल्लता। आंसू एक कांटों ने भी पहना मोती, कटीले पौधों पीड़ा पहुंचाने वाले कठोर हृदय मनुष्यों, पहना मोती हिमबिंदु धारण किया अश्रुपूर्ण हुए। लहर अप्रस्तुत किस प्रकार एक देशीय सूक्ष्म और धुंधले परमर्म व्यंजक साम्य की धुंधला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। एक उठ उठ री लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मल्यानिल की परछाई सी, इस सूखे तट पर छहर छहर। लहर सरस कोमल भाव, सूखा तट शुष्क जीवन, अप्रस्तुत या उपमान भी लाक्षणिक हैं। दो गूढ़ कल्पना सी कवियों की, अज्ञात के विस्मय सी, ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी, छाया। तीन गिरिवर के उरसे उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर। उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्च आकांक्षाओं से है जो लोक के परे जाती हैं। चार बनमाला के गीतों सा निर्जन में बिखरा है मधुमास। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं, इससे उनमें अन्विति कम दिखाई पड़ती है। जहाँ यह अन्विति होती है वहीं समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार साम्य भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा बंधाने वाली अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है, इसमें संदेह नहीं। पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी होती है, प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गुण व अगुण व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परख कर या न ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा वह मनमाना आरोप मात्र होगा। इस अनंत विश्व महाकाव्य की व्यंजनाओं की परख के साथ जो साम्य विधान होता है वह मार्मिक और उद्बोधक होता है। जैसे दुख दावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का बन, करुणार्द्र विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन कर्ण, खुल खुल नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल। यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता, यह उषा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता, यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खिंच आता, हंस पड़े कुसुमों में छविमान, जहाँ जग में पद चिन्ह पुनीत, वही सुख में आंसू बन प्राण, ओस में लुढ़क दमकते गीत गुंजन। पृष्ठ संख्या 365। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी आ जाना, अखिल की लघुता आई बन समय का सुंदर वातायन, देखने को अदृश्य नर्तन लहर। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा आंसू। मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्म स्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र या कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात के रूप में पड़ता रहा है। इससे बहुत सा प्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने आता है। प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर मानुषी वृत्तियों के आरोप का बहुत चलन हो जाने से कहीं कहीं ये आरोप वस्तु व्यापारों की प्रकृति व्यंजना से बहुत दूर जा पड़ते हैं। जैसे चांदनी के इस वर्णन में, एक जग के दुख दैन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन बाला, पीली पर निर्बल कोमल कृष्ण देह लता कुमलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। चांदनी अपने आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती, उसके संबंध में यह उद्भावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है। दो नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हसिनी, मृदु करतल पर शशिमुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनी। इसी प्रकार आंसुओं को नैनों के बाल कहना भी व्यर्थ सा है। नीचे की जूठी प्याली भी जो बहुत आया करती है किसी मैखाने से लाकर रखी जान पड़ती है। तीन लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र से खाली, मानस का सब रस पी कर लुढ़का दी तुमने प्याली। प्रकृति के नाना रूपों के सौंदर्य की भावना सदैव स्त्री सौंदर्य का आरोप करके करना उक्त भावना की संकीर्णता सूचित करता है। कालिदास ने भी मेघदूत से निर्विंध्या और सिंधु नदियों में स्त्री सौंदर्य की भावना की है, जिनसे नदी और मेघ के प्रकृति संबंध की रमणीय व्यंजना होती है। ग्रीष्म में नदियां सूखती सूखती पतली हो जाती हैं और तपती रहती हैं, उन पर मेघ छाया करता है तब वे शीतल हो जाती हैं और उस छाया को अंक में धारण किए दिखाई देती हैं। वही मेघ बरस कर उसकी क्षीणता दूर करता है। दोनों के बीच इसी प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने अप्रस्तुत विधान किया है, पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपका कर करना खेल सा हो जाता है। उषा सुंदरी की कपोलों की ललाई, रजनी के रत्न जटित केश कलाप, दीर्घ निश्वास और अश्रुबिंदुता तो रूढ़ हो ही गए हैं। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती हैं। इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अलग सौंदर्य भी है, जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार पंत जी की छाया, वीच विलास, नक्षत्र में जो यहाँ से वहाँ तक उपमानों का ढेर लगा है, उनमें से बहुत से तो अत्यंत सूक्ष्म और सुकुमार साम्य के व्यंजक हैं और बहुत से रंग बिरंगे खिलौनों के रूप में ही हैं। ऐसी रचनाएं उस कल्पनावाद, कलावाद या अभिव्यंजनावाद के उदाहरण सी लगती हैं, जिसके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण करना व नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक नहीं। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है, उसी प्रकार जैसे बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी। फूल पत्ती लेकर हाथी घोड़े घर बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के नाना चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो गृहित चित्रों में होनी चाहिए। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर बहुत कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कवियों में वस्तु का आधार अत्यंत अल्प रहता है, विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहा है, इससे उनकी रचनाओं का बहुत सा भाग अधर में ठहराया सा जान पड़ता है। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है, अतः कहीं कहीं व्यवहित शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में, निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो यह न कभी बन पाओगे, आह चूम लू जिन चरणों को चाप चाप कर उन्हें नहीं, दुख दो इतना अरे अरुणिमा उषा सीवा उधर बही। यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिप कर दबे पांव आने की बात कही है, जिसके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पड़ने के लिए वह उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं, तब एड़ियों में ऊपर की ओर खून की लाली दौड़ जाती है, वही ललाई उषा की लाली के रूप में चलकती है। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था, इसी से उन्होंने चाप चाप कर दुख दो ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। कामायनी में उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की लज्जा की लाली दिखाई है। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ है, यह हम पहले कह आए हैं। साम्य भावना और लक्षणा शक्ति के बल पर किस प्रकार काव्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुकाव हुआ, यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले उपमा उत्प्रेक्षा रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सांचों के भीतर ही फैलाकर दिखाया जाता था, अब वह प्रायः थोड़े में या तो लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा झलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों में प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिए दृष्टांत अर्थात विन्यास आदि का सहारा न लेकर अन्योक्ति पद्धति ही अधिक चलती है। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति है, पर यह न समझना चाहिए कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं होता है, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा में धर्म बराबर लुप्त रहता है। प्रति वस्तु उपमा हेतु उत्प्रेक्षा विरोध श्लेष एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार एक बंधे घेरे से निकलकर अब छायावादी कहे जाने वाले कवि धीरे धीरे जगत और जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका आभास दिया जा चुका है। अब तक उनकी कल्पना थोड़ी सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजक नृत्य सा कर रही थी, वह जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का जी बहलाने का काम करती रही है। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिए उसे अपनी चपलता और भाव भंगिमा का प्रदर्शन क्रीड़ा कौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊंचे नीचे मर्म पथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न होगा। प्रसाद जी ने लहर में छायावाद की चित्रमयी शैली को तीन ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच ले जाकर आजमाया है। उसमें कथा वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य पृष्ठ संख्या 367 और आभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक मनोहर मार्मिक या आवेश पूर्ण शब्द विधान किया है, पर कहीं कहीं जहाँ मधुमय चित्रों की परंपरा दूर तक चली है वहाँ समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार निराला जी ने जिनकी वाणी पहले से भी बहुमुखी थी, तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। अब हम तृतीय उत्थान के वर्तमान कवियों और उनकी कृतियों का संक्षेप में कुछ परिचय देना आवश्यक समझते हैं।